आंगन में धूप अब ठीक से फैल चुकी थी। सुबह की हल्की गर्माहट में भी एक अजीब सी नमी थी, जैसे रात की बारिश अब भी दीवारों में, पेड़ों की पत्तियों में अटकी हो। रस्सियों पर कपड़े टंगे थे, सफ़ेद हल्के रंगों वाले, हवा के साथ हल्के हल्के हिलते हुए। कहीं से चिड़ियों की आवाज़ आ रही थी, पर उस आवाज़ में भी आज कोई सुकून नहीं था। शामली कमरे से बाहर आई। उसके कदम धीमे थे, जैसे हर कदम सोच समझ कर रखा जा रहा हो। साड़ी सलीके से पहनी थी, पल्लू उसने गर्दन तक खींच रखा था, ज़रूरत से ज़्यादा सावधानी के साथ। आंखों में रात की थकान थी और चेहरे पर वो कसाव जो किसी अंदरूनी लड़ाई का निशान होता है। वो रस्सियों के पास पहुंची और कपड़ों को ठीक करने लगी। एक एक कपड़ा पकड़ती, फैलाती, हल्का सा खींचती ताकि धूप बराबर पड़े। हाथ चलते थे लेकिन मन कहीं और था। उंगलियां कभी कभी रुक जाती, जैसे दिमाग किसी और ही बात में उलझा हो। तभी उसके पीछे किसी के कदमों की आहट हुई। शामली, आवाज़ जानी पहचानी थी। वो चौंकी नहीं, बस उसकी पीठ थोड़ी सख्त हो गई। उसने पलट कर नहीं देखा, बस कपड़ा ठीक करते हुए बोली, हाँ। आर्यन पास आ चुका था। हल्की सी चिंता उसके चेहरे पर साफ थी। वो उसे ऐसे देख रहा था जैसे शब्दों से पहले उसकी हालत पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। तुम ठीक हो? उसने पूछा। शामली ने होंठ दबाए, पल भर को उसके हाथ रुक गए, फिर उसने बिना उसकी तरफ देखे कहा, हाँ, मुझे क्या हुआ है? मैं ठीक हूँ। उसके लहजे में तीखापन था, ऐसा नहीं जो चीखे, बल्कि ऐसा जो चुभे। आर्यन ने इसे महसूस किया। वो एक कदम और पास आया। अगर ठीक हो, उसने धीरे से कहा, तो चेहरे पर ये उदासी क्यों है? शामली ने कपड़ा जोर से झटका, जैसे उस सवाल को झटक देना चाहती हो। अब वो उसकी तरफ मुड़ी। आंखों में नाराजगी थी, साथ में थकान और अफसोस, सब एक साथ। आर्यन, उसने कहा, प्लीज बस करो। आर्यन रुका नहीं, उसकी आवाज में अपनापन भी था और दावा भी। मैं तुम्हें तुमसे भी ज्यादा जानता हूँ, वो बोला। 3 साल का साथ है हमारा, तुम ऐसे नहीं रहती जब सब ठीक हो। शामली की आंखों में एक पल के लिए कुछ टूटा, फिर वो सख्त हो गई। उसने नजरें फेर ली और कपड़ों की तरफ फिर से झुक गई। मुझे पास्ट की बातें नहीं करनी है, उसने साफ कहा। मैं आज में रहना चाहती हूँ, आज, समझे? उसकी आवाज़ में अब गुस्सा कम, थकान ज्यादा थी। आर्यन ने इसे नज़रअंदाज किया। वो आगे बढ़ा, बहुत करीब। उसके कंधे शामली के कंधे से बस कुछ इंच दूर थे, और फिर अचानक उसने शामली का हाथ पकड़ लिया। शामली जैसे सिहर उठी, उसकी उंगलियां अपने आप से सिकुड़ गईं। उसने झटके से हाथ छुड़ाने की कोशिश की। आर्यन, वो फुसफुसाई, घबराहट में इधर उधर देखते हुए, कोई देख लेगा। लेकिन आर्यन ने पकड़ ढीली नहीं की। उसकी पकड़ में एक अजीब सी जिद थी, जैसे उसे लगता हो कि उसे ये हक है। देख ले तो क्या, उसने कहा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। शामली का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फिर से हाथ छुड़ाने की कोशिश की। उसकी सांसें तेज थीं, आंखें बेचैन। छोड़ो, उसने कहा, प्लीज। उसी खींचतान गई, उसका पल्लू जो उसने गर्दन तक सलीके से रखा था सरक गया। गर्दन का एक हिस्सा खुल गया, कॉलर बोन के पास हल्का सा निशान, धूप में साफ दिखता हुआ। आर्यन की नज़र वहीं अटक गई। वो जैसे जमसा गया, उसकी उंगलियां ढीली पड़ गईं और उसने अचानक हाथ छोड़ दिया। उसकी सांसें तेज हो गईं, आंखें फैल गईं। ये, उसकी आवाज़ लड़खड़ा गई, ये क्या निशान है? शामली ने तुरंत पल्लू ठीक किया, हाथ कांप रहे थे। उसने नजरें झुका ली। कुछ नहीं, उसने जल्दी से कहा। आर्यन ने एक कदम पीछे हटकर फिर आगे बढ़ा। उसने उसके कंधों को हल्के से झंझोड़ा, गुस्से और घबराहट के बीच। कुछ नहीं, वो बोला, मैं पूछ रहा हूँ तो जवाब दो। क्या क्या कल रात वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था? आंगन की हवा जैसे थम गई, कपड़े हिलना भूल गए। शामली ने गहरी सांस ली, फिर सिर उठाया। उसकी आंखों में अब कोई नरमी नहीं थी, बस सख्ती। हाँ, उसने कहा, हुआ। एक पल के लिए आर्यन को लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। तो, शामली ने आगे कहा, और अब उसके शब्द जानबूझकर कठोर थे, तुम क्यों पुरानी बातों को लेकर बैठे हो? प्लीज आर्यन, मूव ऑन करो, पास्ट को भूल जाओ। उसने ये सब ऐसे कहा जैसे किसी दीवार के पीछे खड़ी होकर बोल रही हो, ताकि कोई आवाज भीतर ना आए। हर शब्द चुपता हुआ, जानबूझकर। आर्यन की आंखों में गुस्सा और चोट एक साथ उभरे, उसकी मुट्ठियां भींच गईं। इतनी आसानी से, उसने कहा, 3 साल, और तुम कह रही हो भूल जाओ? शामली ने कुछ नहीं कहा, उसने बस एक आखिरी बार उसकी तरफ देखा, नजर में थकान, अफसोस और एक अजीब सी दूरी। फिर वो मुड़ी और तेज कदमों से अंदर की तरफ चल दी। उसके जाते ही आंगन फिर से सांस लेने लगा, कपड़े हवा में हिले, धूप वैसी ही रही, निर्लिप्त। आर्यन वहीं खड़ा रहा। कुछ पल बाद उसने भी मुंह मोड़ा और अपने कमरे की तरफ चला गया। उसके कदम भारी थे, जैसे हर कदम के साथ कुछ भीतर गिर रहा हो। दरवाजा बंद हुआ और हवेली, अपने भीतर दो अलग अलग कमरों में दो अलग अलग खामोशियां समेटे रह गई। रसोई में धूप छनकर आ रही थी। खिड़की के पास रखे मसालों के डिब्बों पर हल्की चमक थी और गैस पर चाय का पानी उबलते हुए धीमी सी सीटी दे रहा था। शामली ने साड़ी का पल्लू ठीक किया और कप से कप में चाय छानने लगी। हाथ काम में लगे थे, मगर मन आंगन में छूटे सवालों की तरह इधर उधर भटक रहा था। बाकी नौकर अपने अपने काम में थे, कोई सब्जियां धो रहा था, कोई आटा गूंथ रहा था। मधु पास ही खड़ी थी, फुर्तीली आंखों में शरारत। उसने प्लेट आगे बढ़ाई, फिर अचानक श्यामली की गर्दन की ओर नजर चली गई। एक पल को वो रुकी, फिर मुस्कान चौड़ी हो गई। अरे ये क्या है बहू जी, मधु ने हंसी दबाते हुए कहा। अच्छा समझ गई, ये तो प्यार का चिन्ह है ना। श्यामली का हाथ ठिठक गया, कब से चाय की धारा जरा सी टेढ़ी पड़ गई। उसने जल्दी से पल्लू और ऊपर खींचा, आंखों में घबराहट तैर आई। नहीं, उसने जल्दीबाजी में कहा, तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है, मच्छर ने काट लिया है। मधु ने भौहें उचकाई, मच्छर ने या ठाकुर साहब ने, वो खिलखिलाई जैसे बात का मजा ले रही हो। श्यामली ने कुछ कहना चाहा पर शब्द गले में अटक गए। मधु हंसते हंसते आगे बढ़ गई। अच्छा मैं सब्जी देखाती हूँ, कहकर उसकी हंसी रसोई में देर तक गूंजती रही। श्यामली ने गहरी सांस ली, दिल जोर से धड़क रहा था। उसने इधर उधर देखा, कहीं किसी और की नजर तो नहीं पड़ी। गैस की आंच जैसे तेज लगने लगी। उसने खुद को संभाला, चाय के कप सलीके से ट्रे पर सजाए, मगर भीतर एक डर कसता गया, अगर सबको पता चल गया तो सब क्या सोचेंगे। उसने पल्लू फिर से ठीक किया, नजरें झुकाई और थाम खुद को और ज्यादा डुबो लिया, जैसे यही उसे बचा सकता हो।